महाप्रभु स्थिति करते हुए कहते हैं बैराग्य विद्या एकदम पूर्व से बुला सकते हुए भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो कभी कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुत्र जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु भक्त जत दया की प्रथा इसलिए इनका स्तुति में इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नमः गौर ईश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्ति कहते इनका मूर्ति क्या था कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ वैराग्य जना पाषाण रेखा उसी तरह इनका अंदर भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इनका अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है ऊपर का जो उनका बैंस है और दूसरे वैराग्य का तात्पर्य होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है इसलिए साक्षात वैराग्य होता है विशेष अनुराग कैसे था रस था ये साक्षात बुद्धिमान थे इसलिए सगर हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय बुधाए गो प्रेम भई राधे राधे यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था सब समय बुधाए गो प्रेम भई राधे राधे बोल कीर्तन करते थे और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे इसलिए इनका सिक्का है उच्च स्वर कर हरि नाम गाओ नामे प्रभाव स्मरण हरि में सेकाले भजन निर्जन संभव इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक शिक्षा दिया है इसलिए जो इसलिए कभी कभी इनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की शिक्षा दो अष्टकार्य लीला की हमें शिक्षा दो लेकिन बाबा जी महाराज साक्षात सिद्ध पुरुष है उनको पता है कि अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध सोच की चिंता नहीं कर सकते ये अष्टकार्य लीला स्मरण करने के अयोग्य है इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे शिक्षा नहीं देते थे इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है इसे श्रीमद् भागवत में महा वैरागी धैर्या करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा यदि जो वैरागी है उनको विशेष करके लगना है रक्षी सती विश्वास और गोत्र से वर्णन कथा यदि उनको भगवान को पर में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखे कृष्णा विश्वास पालन भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे तभी इन चीजों को विश्वास कर सकते हैं तभी वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणा कर इसे भागवत में सिर्फ सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैरागी के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है भगवान इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया फिर तुम खाने के लिए क्यों चिंता करते हो कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो नहीं स्थान होनी चाहिए कहते क्यों भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने इतना बड़ा पृथ्वी बनाने सोने के लिए कमी है जिसने कहा भैया सिर्फ पीने के लिए तो पानी चाहिए कल इतने भगवान इतने जो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया तो भगवान क्यों इतना नदी भी बनाया कहते ठीक है लेकिन तब उसको पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए कहते क्यों भगवान अंजल नहीं दिया ये अंजल दे दिया इसलिए पानी भर कर रखी लो कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए हाँ बिस्तरा चाहिए और सोने के लिए बगैर तकिया की तुरंत नींद आएगी कहते क्यों भगवान ये हाथ नहीं दिया ये हाथ की सहारा से सो जाओ कहते अगर जंगल में आप बोलते हो जंगल में रहकर भजन करेंगे अगर शेर आकर खा गया तो कहते क्यों भगवान क्या अपना भक्त सरलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है भगवान को तो विश्वास नहीं है यानी यह जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बता रहे क्योंकि धन दुर्बल दुर् मन वाला जो धन नष्ट मतवा वाले उनको पास में गिड़गिड़ा लिखा उनको पास में हाथ भरने कोई जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर में निर्भर करके भगवान भजन करो भगवान संपूर्ण रूप से रखा करेंगे। यानी यह जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बता रहे ये एक एक वस्तु ये गौर किशोर दास महाराज महाराज का जीवन में ये देखने को मिलता। इसलिए गौर किशोर दास महाराज महाराज फिर रहते थे कहाँ पर कोई अच्छी जगह में नहीं वो साधारण कैखाने में रहते थे। कहते क्यों कहते ये इसका बदबू सही है हाँ लेकिन बाहर रहेंगे इससे लोग इनको आकर तंग करते थे जानते थे सिद्ध महात्मा इसलिए कभी कभी चारों तरफ में तांता बिछवा मछली का तांता चारों तरफ में बिछा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि वाह मछली खाने वाला बाबा है कहते मछली का तांता किनारे कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे इससे का जो गंध है कम से कम मेरे कान तक नहीं आएगा। इसलिए उन्हें इससे डर से वो पैखाना करते थे जोर जोर से हल्ला कर सके। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्भय होकर के सिंह रूप के सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया ये महापुरुष का आशीर्वाद है और उनको सिंह का बच्चा भी सिद्ध होता है। इसलिए हमारे महाराज जी को भी देखो कभी एक शहर है हमने बहुत सारी जगह में गए महाराज जी को देखा बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन दो तीन जगह में देखा कहीं भक्ति का विरोध कहीं मायावादी के बारे में किसने बोल दिया तो महाराज की शेर जैसे एकदम उस पर झपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे उसको एकदम उसका जो सिद्धांत को ऐसे चकना चक कर रहे थे डर रहा था महाराज जी कोई डर है नहीं। इसलिए ये गौर किशोर दास महाराज महाराज परंपरा में समझो कि महाराज जी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है खबरदार वहां जाना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया सर्वप्रथम हुए श्री पार्वजा गोविंद मठ सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है और प्रभुपाद किए गौर किशोर दास महाराज महाराज का जैसे बेस है कौन सा बेस है कहते बाबा जी बेस है लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास बेस किया और संन्यास बेस लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशोर दास महाराज महाराज ने कहा था जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण दिशा करके मेरे को विलास नहीं करना कम से कम रजत मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया इसलिए जिस समय गौर किशोर दास महाराज प्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा अगर इसको समाधि देंगे कम से कम लोग आकर उसको प्रणाम देंगे कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग एकत्रित हो गए प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। यदि वहां पर सारे बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है उससे बड़े झगड़ा हुआ वहां पर पुलिस अफिसर लोग आ गए जो पुलिस अफिसर आए वहां पर प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये साक्षात महापुरुष है महाभागवत अप्रकट गलग अगर इनको शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य ये त्यागी है और मैं भी उनसे त्यागी शिष्य हूँ इनको कोई त्यागी महापुरुष ही समाधि दे सकता है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं यदि उनको बाबा जी वैसे है चल ऊपर से केवल बाबा जी वैसे क्या है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है एक साल के अंदर में अगर किसी ने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया वो आकर के इनको समाधि दे नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके राख बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कहाँ गए जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार किए उनको पीछे पीछे सरकने लगे कहता अगर एक साल में नहीं हो छह महीना के अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है अगर हुए आकर के तो शरीर को इसको सुन के और कुछ बाबा इस तरह के अगर कहते हैं छह महीना के अंदर मिलेगी, अगर एक महीना के अंदर में अगर किसी ने की आई और कुछ किसी अगर ऐसे कोई मिलेगी कहते 15 दिन एक सप्ताह लास्ट प्रभुपाद किसी ने ये बताए एक दिन पहले तक एक लाख के पहले तक मन में अगर किसी ने स्त्री को स्मरण नहीं किया अगर ऐसे कोई व्यक्ति आए तो समाज से बाबा बोलते ही सभी को अवस्था खराब हो गया और एक एक इंसेक्ट सबके सब गिर गए वहां पर जितना पुलिस अफसर थे वो दंग रह गए ऐसे ही सब साधु थे तब प्रभुपाद ने उनके शरीर को उन्होंने बताया था हमारे शरीर में रस्सी बांध करके वो लोग सोच रहे थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का निर्देश थे रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को इस फिसल के लिए ले जाए प्रभुपाद ने कहा उनको गुरुदेव सोच भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं एक शुद्ध शिष्य के हृदय में ही शुद्ध गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया शरीर क्या है वैष्णव का शरीर अपराधित दिव्य है इसलिए वो शरीर को महाप्रभु कितना आदर किया अपना गोद में उठा करते होते हुए महाप्रभु कीर्तन करके करते करते और समाधि देते अपना हस्त में महाप्रभु ने इतने आदर दिया वैष्णव शरीर को उनको कोई रज की कोई नवदीप रज की उनको कमी है जब 24 घंटा में नरेंद्र देव में जो अस्पताल मिला को हृदय में चिंतन कर रहे हैं क्या कोई को रज से भी अलग है संपूर्ण रज ही रज है संपूर्ण अपराध का कलव है इसे महाप्रभु ने भी आदर किया और इसे शरीर बिगड़ कर जाएंगे तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथ में ही वे उनको समाधि देते हैं इसलिए प्रभुपाद का कुछ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का कुछ लीला से आदेश से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती कहते तो नहीं प्रभुपाद वास्तव रूप में उनका शिष्य है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो अभीष्ट है श्री चैतन्य मन अभीष्ट गौर किशोर बाबा जी महाराज अभीष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठित किया उनने कहा कलकत्ता में नहीं जाना अगर कोई भागवतर गोड़े मठ मायापुर में नव मठ को चैतन्य मठ चैतन्य मठ स्थापन नहीं करते अभी हम लोग जो पापी शरीर पापी कीड़े शरीर कीड़े हैं कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे कभी हमें सुजग मिल सकता था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है निष्क्रिय रूप में प्रचार नहीं किया लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं हाँ और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं ये कभी हो सकता था तो क्या गुरु क्या चाहते हैं गुरु जी का क्या इच्छा है गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मन अभीष्टम स्थापितम जगद्गुरुले चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट है महाप्रभु का मन अभीष्ट क्या है महाप्रभु का मन अभीष्ट है प्रति भरे भरे किया कर एक भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा महाप्रभु का यही आदेश है या वही ना बोले में ना बोला है यार पृथ्वी पे आज जैसा नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है वे मरना ये महाप्रभु का यही मन अभीष्ट है अगर यह मन अभीष्ट को किसने जगत में स्थापन किया तो किसने स्थापन किया है श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अभीष्ट ही यही तब उन्होंने उनको अभीष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाच उठ रहे सब कृष्ण कीर्तन में सब मधुआला बोल हो रहे ये किसका कृपा है ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु परंपरा की कृपा है इसलिए उनका वो कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए उनको एक समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपूर्ण धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके धार बार से कई प्रभुपाद को प्राप्त कर रहे जो कि अत्यंत अत्यंत भयाग रूप में रहने वाले किसी तरह से धारण करके इसको देख करके बोले हरे ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतना भैया धोती इतने भैया कपड़े और हर भाषा क्या बात है कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो कहते यही बस नहीं बस क्यों कहते कुछ बाबा जी लोग बाबा जी जैसे बैराग का बेस लेकर के बड़े झटका जान कर रहे हैं लिए हुए बाबा जी का बेस कर रहे हैं बड़े गति गति का उससे तो अच्छा है अच्छे बेस पे खाड़ वाल बना करो और भगवान से भजन करो इसलिए मैंने यह सीखा किया किसी समय किसी सिक्के के ऊपर में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लगाए किसी एक स्त्री ने देख लिया था उसको देख लिया था, तो जब वो सांप चला गया तो स्त्री आके बोले, बाबा जी महाराज हमने देखा है एक सांप इस चीके के ऊपर चढ़े और मुंह लगाया, खबरदार खाना नहीं बजाओगे। इतने में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज युद्ध बिगड़ गए उसके ऊपर में, तुम यहाँ से चले जा सत्यानाशी, यहाँ पर किसी लिए आए, क्या करने के लिए आए, भाग यहाँ से, अगर मेरे को सांप खा जाए तो अच्छा, लेकिन तू नहीं खा जाए। इसलिए वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सिक्का देते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रधर हम कहते हैं कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कहते सनई सनई कहते धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते हैं साधु को पास में, आकर के धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 चित्त बद्ध होते ही है, धीरे धीरे सेवा पा पा करके उसको प्रति हो जाता है प्रति भावना, धीरे धीरे जैसे प्रेम बढ़ते 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 भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया फैल जाता है। इसलिए साधु कद चहर खाने पर कद एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन अगर किसने माया में फंस गया तो कद एक जीवन किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है। इतने जोर जबरदस्ती उस पर ऊपर में माया की संस्था बढ़ता है, एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म घटना के अनुसार लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे, भजन करने वालों को कितने दूर रहना चाहिए माया से, यहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपना जीवन चरित्र शिक्षा देते हैं। इसलिए आज उनका तिरुभाव है, वे अपना जीवन में जो शिक्षा दिया बहुत कठिन है, उनका शिक्षा ग्रहण करना एक शुद्ध बजाय है। इसलिए हम गुरु जी के चरण में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं, वे हम लोग आशीर्वाद कृपा करें, किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेकर के जैसे हम अपना जीवन में नगर साधन में कुछ कर सकें। बच्चा को ऊपर
Shri Lord Kishore Das Goswami Maharaj is a very wonderful opportunity to remember the qualities of a Mahabhagavat, Rasi Vaishnava, who lived within the holy Dham, Sri Navadvip Dham, completely immersed in the eternal pastimes of the Lord, but yet interacting within this world externally, performing the activities of a sadhaka, although siddha, mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six brahmacharis, also they perform their internal bhajan, and internally they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally, they were also showing So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it's important to understand, in the case of Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj, that we say he was sakshat vairagya murtai. He was directly the embodiment of vairagya. But this vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this vairagya was the result of his extreme moods of viprarambha, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj's renunciation, was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam-bhajan and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a bhajanandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gosthiyanandi, which his great disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, performed. But they were, of course, on the same level. The difference between Bhajanandi and Gosthiyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth, in Arunda Guru Varga, who very extensively preached, but all were on the same level actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gosthiyanandi or Bhajanandi. So Srila Gaura Kishoradas Goswami Maharaj, he gave very good advices by his, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice, he would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There was one incident about a young Babaji who came, and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually, whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul, because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition, and therefore he is acting as his real friend. But unfortunately, the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform non-bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him, and they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandri Chandra. Munindra Chandra Gandhi. He was a very powerful royal figure, landowner, but he was also like a king, and he was a Vaishnava. And he had appreciation for the association of the sadhus. So he wanted to invite Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj to come to a very great conference. He was trying to organize a Vaishnava conference. So he wanted that Babaji Maharaj will leave the Navadvip Dham, and he will come there and reside in his palace for some days, and he will attend this Vaishnava conference. So he was begging him and insisting, "Please, Babaji Maharaj, come, come." So then at that time, Babaji Maharaj told this Manindra Chandranambi, he told him that, "If I go there, first of all, I will have to leave Gaura Dham. I will have to leave this eternal Dham of my Vishwambhar, my Mahaprabhu. And then I may come there to your palace. And receiving very nice facilities at your palace, such as very nice bedding, very nice food, and so forth, I may become somewhat attached to these things. And gradually, I will become more and more attached, and I may start to see you as my competitor. That, oh, you have have so much and I have so little. And therefore, I would make a bit of offense against you, that you are a Vaishnava and a Vaishnava king. So I prefer that this will not happen. I want to have a very loving relationship with you. I want to continue to cultivate your bhakti in your association. So it is better that instead of my going to your palace, that you should give up your palace, all of your wealth, and you should come here and reside with me on the banks of the Ganga and accept the path of renunciation, and together we will hear Hari Katha and we will enjoy the taste of the bliss of pure bhakti. So Manindra Chakra Nandi, of course, he did not accept this advice. But nevertheless, Gopisharadas Bhakti Maharaj, he was always being very direct. He would never mince his words, and he would try to give the best advice so that a person could easily give up their material attachments. So Srila Balaji Maharaj, in many circumstances, his life was an example to show that in anyone who is residing in the holy Dham of the Supreme Lord, they must not commit offense against the holy Dham. They must not maintain their material attachments and come to holy Dham, bringing the same material attachments that they have in their ordinary family life. But if they want to come to the Dham and actually reside in the Dham, well, then they should actually follow this path that he was showing by his own example of total renunciation of the mundane sense gratification and completely absorbing oneself 24 hours daily in hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Lord. So this example, if it is not shown by the Mahabharata Vaishnavas, well then, how will the ordinary mass of people know what to do? Because everyone within this material world is in a diseased condition. They do not know what is beneficial for them. But when they come into the association of a great, pure Vaishnava, that Vaishnava can immediately detect, just like the most expert doctor who takes the pulse, can immediately detect what is the best medicine for that individual, and they can prescribe and give them all benefit. So Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, in our disciple succession, he is the very, very, very powerful Mahabhagavata, who is the spiritual master of our Guru Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And although Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj, from an external point of view, from a material level, he was not educated and even illiterate. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, on the other hand, he was the most educated person, most highly intellectual, literate person, greatest intellect, powerful personality. But he submitted himself at the lotus feet of Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj and begged him for initiation. And when he submitted himself by the order of Bhaktivinoda Thakur that he should go there, Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj said that, "I am not qualified to give you. You are a very exalted personality. And I am just from an ordinary level. So I cannot give you initiation." And Bhaktisiddhanta Saraswati was crying at his lotus feet. And finally, after repeated attempts, then finally Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he agreed to accept Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of a sadhaka in this world. And he told that he completely removed any kind of false ego that I have, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciple succession, all of our guru parampara, they are of this level. They are the Mahabhagavas, and they are Rupa-Rupa Vaishnava, Rasi Vaishnavas, down to the present day, coming down in our minds to Srila Bhakti Pratyana Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Prabhupada Guru Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gaurakishore Das. out why I can preach all over the world and give this mercy of the message of Chaitanya Mahaprabhu. This shows out that this mercy and then that we can become servants of His lotus feet and become servants of the servant of the servant of Srila Gopi Shridhar's Goswami Maharaj.
वो रात भी कहते राधा जी का भक्ति तत्व उसके जिसमें हमारे सिर्फ अपने कक्ष में बुला करके बताया किसी तरह से
के बाद वो समाधि समाधि के लेकर गए और नाम संकीर्तन पर जो से और अपने गुरु भाई सब कृष्ण के साथ और मायापुर में और राधापुर निकेतन पर उनके समाधि किंतु कुछ बाबा जी
अनुग्रह पर हम एक कृष्ण दासी
কৃপা করে দিচ্ছে, বলছেন যে আপনি কৃপা করেন আমার সুখে বিশ্বাস করে এই ভাব। খবরদারি করে দিয়ে তার সব প্রকারের সেবা
अभी
और दूसरा परिवर्तन के स्थान कलकत्ता मत जाना, पहले और कलकत्ता में स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अवधि को आपका सेवा नहीं कर सका। फैमिलोसी मानकर घुमा कर गंगा में फेंकना, फैमिलोसी मानकर नवदी में घुमा कर गंगा में फेंक देना, उनको अर्थ बताया था। उन्होंने आपने सर झगीचार लिया कि अभिचार लिया कि मित्र निश्चित रूप में और मतलब अक्षर रूप में विचार करके करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उनके अर्थ के आप कोलिंग के स्थान के जी को पहले उद्धार करो, ये भाव को लेकर के पहले कलकत्ता में स्थापन किया। और जब तक आपको बताया इसे समाज को जो ही नहीं सकता है अयोग्य है, और इसलिए उनको अर्थ लेकर के क्या उसी नहीं माना। तुझे देखा मैंने बताया
like that, it should be like this, then where is the question? question with being disciple. Therefore, to really understand this thing is very difficult, and only such as you can understand how Prabhupada really followed the order of Sri Gaura Vishwanath Bhakti Maharaj. Pujapati Madhava said, Pujapati Madhava is explaining that Sri Saraswati Thakur, he never went to the place of Kali. He went there and removed Kali and established the worship of Radha Krishna in Calcutta. Therefore, he fulfilled the Manavis, the innermost intention of his guru.
आपनारा काल के पढ़ना की दाई प्रबल था ने तो प्रधानमंत्री मिया के सब कल आप लोग प्रबंधन की पंडा को दाई करने के लिए उनका प्रणामी का रुपया साथ में ले आएंगे इन द मॉर्निंग ऑल डिवोटी शुड ब्रिंग सम प्रणामी और पंडा ऑफ So you should bring and you will be given to
Jai Shri Guru Ji.
Hare Krishna. Our last day of this Karti Mandir retreat. So in the morning we finish our job and wherever we have arranged our devotees in our guest house at Dharmasala, our time limit up to him up to lunch. So after lunch, we have to vacant all Dharmasala guest house. And 2:30 p.m. us will come to take you Vrindavan. After the camera is live, we can go. So whoever wants to go Vrindavan, they can register their name in Vrindavan. We have to arrange bus. Outside is a big board, they can put their name for the buses. In fact, according, we have to arrange bus accordingly. Tomorrow morning, and now I have to finish, according to name, we'll arrange passes. Later on, we can arrange pass, and whoever wants to stay there by own, they can get their own, they can contact guest house and Dharmasala and other place. Only we can arrange pass only trip, not other day. So whoever want to stay longer, they have to arrange their own. They have their own arrangement. We are not responsible for that. So please register your name just after class on the board and tomorrow morning. We have to arrange pass, have to order pass tomorrow morning by 9. So and 6 will be over in Ananda Dham, who will be in Vrindavan. They can attend Anandham Parikrama, Guru Vidyalaya on 6th November. Hare Krishna. Thank you for the cooperation. Anandham program will be 3 p.m. in Vrindavan. And after Parikrama will be Prasadam Sadhya in Anandham.
The names of all the devotees who received initiation will be announced just now. On the 27th, Mr. Gill from Mumbai. His name is Jagannath Das. A member of the GDL, Amam Krishna Das from California. Yudhavir Das from Russia.
Jadubar. Jadubar Das.
All this is not.
No, they are not actually.
Olga Gerasimova.
Russia. Gandharva.
Naresh Kumar.
Alok Das from Roman Bihari Gorjamar. Asim Krishna Das.
Naresh Kumar from Mathura.
Same name Naresh Das.
Mahavir Prashad Singhal.
Has decided to go out to the world and preach to the world via the internet on how Krishna consciousness has helped him endure and overcome the tragedy that he's undergone. And I also want to lastly announce that Shravan will have information about a website that's being launched, that where you can go and listen to him give classes and tell his story, and also where he will talk about Srila Gurudev and Srila Gurudev's preaching mission, and if you'd like, give some small donation to help him with his medical support. Thank you very much.
Rajanath.
Hare Krishna. The Holy Spirit, experienced and you are experts on web designing, please contact me today or tomorrow. We have some services for you. Those who are expert in web design.
Rajanath.
One more name further. One devotee from Bangalore, his name is Vasanta. Guru's name is Banwari Brahmachari. Vasanta from Bangalore, and Banwari Brahmachari.
Rajanath.
Rama, please give me Rama.
Rajanath.
Hare Krishna. So the title of this drama is Vaishnava Aparadha, the gravity of Vaishnava Aparadha. One time, Srila Rupa Goswami was doing bhajan in the courtyard of Sri Sri Radha Damodar temple. He was meditating on the beautiful pastimes of Sri Sri Radha Krishna. That time, one Vaishnava named Khanji Krishnadas, who was lame and weeping, came in front of him. Srila Rupa Goswami did not know that he has come in front of him. Being absorbed and remembering Srila Radha Krishna's divine pastime, he laughed loudly. He remembered the pastime at Kusum Sarovar. And then Khanji Krishnadas thought that Rupa Goswami was laughing at him. And thus, Rupa Goswami's meditation broke. And he could not remember Srila Radha Krishna's pastime. Later on, when Sanatana Goswami, the Shiksha Guru of Rupa Goswami, came to meet him, Rupa Goswami inquired from Sanatana Goswami the reason why he is not able to engage in Lila's mind. Sanatana Goswami told him that he may have committed an offense to some devotee of the Lord and he should arrange for a great bhatara or a feast. And if any Vaishnava turns down the invitation, then we should understand that he has offended that particular Vaishnava. So then Rupa Goswami did exactly the same and he found that Khanji Krishnadas was apparently offended. So this is actually the story which Gurudev also said. This shows the severity of Vaishnava Aparadha. Abhi hum jo natak prastut karne ja rahe hain, iska naam hai Vaishnava Aparadha. Vaishnava Aparadha ka gurutva kitna bada hai. और वैष्णव अपराध से क्या क्या समस्या जीवन में आ सकती है, इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक किंमत अंकी है कि रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर के प्रांगण में भजन कर रहे थे तमाम वृक्ष के नीचे। उस वक्त वो लीला स्मरण में मग्न थे। राधा कृष्ण की दिव्य लीला जो उत्सव सभा में खड़ी हुई है उसको याद कर रहे थे। उस वक्त उनके सामने एक लगड़े वैष्णव संजीव कृष्णदास आए। रूप गोस्वामी की आंखें बंद थी और वो लीला स्मरण में मग्न थे, इसलिए लंगड़े वैष्णव को देख न पाए और हंस पड़े। तो खंजी कृष्णदास जी ने इसके ऊपर अपराध किया और उस अपराध के कारण रूप गोस्वामी का भजन में मन लगना बंद हो गया, लीला स्मरण उनके सामने नहीं आ रहा था। जब उनके शिक्षक गुरु जी सनातन गोस्वामी और उनके गुरु बंधु सनातन गोस्वामी उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि सनातन गोस्वामी हमें बताइए कि हम लीला स्मरण क्यों
Brahma, I'm the Lord of Krishna.